नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने समय न मिलने के कारण यीशु की पूरी बात को नहीं सुनी थी, परंतु आज हम देखेंगे कि वह हमें दावतों में व्यवहार करने के बारे में क्या शिक्षा देते हैं। आइए हम लुका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 8 से 10 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। इसलिए दावतों में आप सबसे नीचे के स्थान में बैठना, वहां आपको स्थान पाने में कठिनाई भी नहीं होगी। तब मेहमानदार आकर आपको सम्मान सहित ऊंचे स्थान पर बैठाएगा और किसी और को उस स्थान में खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही शिष्टाचार है। इस घटना से यीशु ने एक महान सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हम लुका 14 उसके 11 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह हम विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब प्रभु मेहमानदार के लिए कुछ और कहते हैं। लुका 14 उसके 12 से 14 पद में आगे पढ़ते हैं, तब उसने अपने न्योता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। यहां हमारा प्रभु यीशु एक और महान सिद्धांत समझा रहा है। हमारा साधारणता अभ्यास यह होता है कि हम अपने ही मित्रों को दावतों में आमंत्रित करते हैं और उन्हीं के घर दावतों में जाते भी हैं। परंतु क्या हमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास खाने को भी नहीं है? वे आपको उपकार लौटा नहीं सकते, वे बदले में आपको दावत पर भी नहीं बुला सकते हैं। कुछ ऐसे काम भी हमें करने चाहिए जिनके बदले में हम लौटाने की आशा न रखें। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें बड़े भोज का दृष्टांत। इस भोज में तनाव के वातावरण की कल्पना कीजिए। तनाव तब आरंभ हुआ जब प्रभु यीशु ने जलंधर के रोगी को चंगा किया, जो धर्म गुरुओं को स्वीकार योग्य नहीं था। तब उसने अतिथियों की आंखों में आंखें डालकर उनके शिष्टाचार को सही मार्ग दर्शाया। उसने मेहमानदार को भी सुधार का मार्ग दर्शाया। वहां तनाव इतना अधिक था कि कोई भी मनुष्य एक शब्द नहीं कह रहा था। हम लुका 14 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उस शांत वातावरण में एक वृद्ध दुष्ट अपना मुंह खोलता है और कहता है, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। नीरस धार्मिकता। मैं वहां होता तो उससे अवश्य पूछता कि उसके कहने का अर्थ क्या है। आज भी हमारे मध्य ऐसे अनेक उक्तियां हैं जिन्हें सुनकर तो मैं कभी झुंझला भी उठता हूं। उनमें से एक है जय मसीह की। यह बहुत ही अच्छी अभिवादन है, परंतु यदि मन की गहराई से ना हो तो चुभता है। हमें ऐसे दिखावे की धार्मिक उक्तियों से मुक्ति पाना है। मेरे विचार में यीशु की आंखों से क्रोध झलक रहा था जब उसने कहा। हम लुका उसके 14 के 16 और 17 पद में पाते हैं, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। मित्रों, उन दिनों की प्रथा यह थी कि भोज का आमंत्रण बहुत पहले दिया जाए और जब भोज का दिन आ पहुंचे तब व्यक्तित्व बुलावा भेजना जरूरी होता था। परमेश्वर ने निमंत्रण भेज दिया था, मनुष्य क्या करेगा। परमेश्वर का निमंत्रण उद्धार का है। इस भोज में न तो आप टिकट खरीद कर जा सकते हैं और न ही बलपूर्वक उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इस भोज में आने के लिए आपको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना होगा। मेरे मित्रों, पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखता है, 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यह निमंत्रण एक वरदान है। स्वर्ग में प्रवेश न पाने का एकमात्र कारण यही होगा कि इस निमंत्रण का इनकार किया जाए। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि उसकी यह बात धार्मिक आडंबर है। वास्तव में मनुष्य परमेश्वर के निमंत्रण के साथ जो कर रहा है वही है। हम लूका 14 उसके 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। मेरे मित्रों, यहां पर यह बहाना नहीं है, एक झूठ है जो बहाने के पीछे छिपाया जाता है। किसी भी आमंत्रित व्यक्ति ने यह नहीं कहा, क्षमा करना, मैं नहीं आ सकता। वे केवल नहीं आने के बहाने बना रहे थे। पहले व्यक्ति ने कहा कि वह भूमि खरीदने जा रहा है। कैसे मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो बिना देखे सोचे समझे सौदा किए खेत को खरीदने जा रहा है। तब हम आगे पढ़ते हैं लूका 14 अध्याय उसके 19 पद में, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा करा दे। यहां पर हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वह बैल खरीदने जा रहा था। वह व्यापारी था, यह भी एक मूर्ख मनुष्य था। यह रात का समय था, वह बैलों को खेत में लगाकर कैसे परखता। आज अनेक लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे रोटी भी तो कमाना है। मनुष्य अपने काम काज में ऐसे व्यस्त हो गया है कि उसे परमेश्वर के लिए समय नहीं मिल रहा है। एक दिन आप मर जाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि सब कुछ आपके बिना आसानी से चल रहा है। मेरे प्रिय मित्र, हम आगे पढ़ते हैं लूका 14 अध्याय के 20 पद में, एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। मित्रों, इसराइल की व्यवस्था में यदि सैनिक की नई नई शादी हुई है तो उसे युद्ध पर जाने से छूट प्राप्ति थी। इस व्यक्ति का बहाना तो सबसे अधिक अर्थहीन था। वह अपनी पत्नी को लेकर भोज में क्यों नहीं आया। कहने का अभिप्राय यह है कि उसके मोह ने उसे भोज में नहीं जाने दिया। मैं अनेक बार सुन चुका हूं कि मुझे रविवार ही मिलता है कि अपने परिवार के साथ व्यतीत करूं, इसलिए मैं आराधनालय में नहीं आता। मेरे मित्रों, आज कितने लोग हैं जो अपनी संपत्ति की देखरेख, कामकाज और मोह के कारण परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर का निमंत्रण यीशु के लहू से लिखा हुआ है, जिसमें आपको उद्धार की महान भोज में आमंत्रित किया गया है। यह आपके लिए है कि आप आए या ना आए। लूका 14 उसके 21 से 24 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, ठुंटों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन नेवते हुओं में से कोई मेरे जीवनार को न चखेगा। मेरे प्रिय मित्र, यह एक गंभीर बात है। यदि आप परमेश्वर के निमंत्रण को अस्वीकार करेंगे तो परमेश्वर के पास आपके लिए स्थान नहीं होगा। आप भोज से नादखल कर दिए जाएंगे क्योंकि आपने आना उचित नहीं समझा। हम लूका 14 उसके 25 से 27 पद में आगे पढ़ते हैं, और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं इन पदों का सीधा सा अर्थ है कि हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। विश्वासी के मन में परमेश्वर का स्थान ऐसा होना चाहिए कि उसके स्वभाव से यह प्रतीत हो कि वह अन्य बातों से घृणा करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुम्मट निर्माण का दृष्टांत। लुकार्ची सुसमाचार 14 अध्याय उसके 28 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठड्डों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। मेरे मित्र, मसीह के लिए निर्णय लेने के कारण कुछ न कुछ हानि अवश्य उठाना पड़ता है। उसके शिष्य होने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। मेरे मित्रों, आप सोच लें कि आप क्या करेंगे। निर्णय लेने से पूर्व उसका जो मूल्य चुकाना होगा उसे आप गिन लें। हम आगे देखते हैं युद्ध में जाने वाले राजा का दृष्टांत, लूका 14 उसके 31 से 33 पद में, या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं, नहीं तो उससे दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, यहां पर हम फिर से देखते हैं कि मसीह यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करने पर आपका उद्धार निश्चित है, परंतु बिना बलिदान और आत्म त्याग के उसका अनुसरण करना और उसकी सेवा करना संभव नहीं है। विश्वासी और शिष्य में अंतर है। दुर्भाग्य से सब विश्वासी शिष्य नहीं है। यही इस गद्यांश की शिक्षा है। हम आगे देखते हैं नमक स्वाद खो दे तो क्या होता है। लूका 14 अध्याय उसके 34 और 35 पद में हम पढ़ते हैं, नमक तो अच्छा है परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि नमक का स्वाद चला जाने से वह सड़कों पर पैरों तले रौंदा जाता है। वह किसी काम का नहीं रहता परंतु हमें निष्काम विश्वासी होने से बचाए रखता है। मित्रों, बाइबल के अध्ययन में विभाजन के अनुसार हम अध्याय 14 के अंत में आ गए हैं, परंतु यीशु की जीवनी अभी समाप्त नहीं हुई है। अतः हम अध्याय 15 में आगे बढ़ते हैं जहां यीशु ने अत्यंत अर्थपूर्ण तीन दृष्टांत सुनाए, खोई हुई भेड़ का, खोए हुए सिक्के का और खोए हुए पुत्रों का, जिनमें यीशु समझा रहा है कि परमेश्वर मनुष्य की कैसी चिंता करता है। उसे खोजता है, उसकी प्रतीक्षा दिन रात करता है और मिल जाने पर बहुत आनंदित भी होता है। इन दृष्टांतों की भूमिका पद 1 और 2 है, क्योंकि फरीसी और शास्त्री पापियों के साथ उनके व्यवहार की आलोचना कर रहे थे। यीशु के उपदेश सुनने के लिए यीशु के पीछे बड़ी भीड़ रहती थी, जिसमें चुंगी लेने वाले और पापी भी उसमें शामिल थे, और यीशु उनसे परहेज नहीं करता था, वह उनके साथ भोजन भी करता था। जब मैं एक छोटा बालक ही था तो अपनी एक चाची के घर जाता था। यदि अतिथि अधिक होते थे तो मेरी चाची मुझे ऊपर के कमरे में ठहराती थी। वहां उन्होंने एक चित्र लगा रखा था। इस चित्र की विशेषता थी कि उसमें तीन दृश्य एक साथ थे। मुझे वह चित्र इसी कारण मनभावन लगती है। इसी प्रकार यहां भी यीशु के दृष्टांतों में त्रिफल प्रदृश्य है, अर्थात तीन बातें एक साथ दर्शाई गई हैं। हम लूका 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। मित्रों, एक छोटी लड़की थी जिसने यह दृष्टांत सुना। वह लंदन में ठंड से बचने के लिए आराधनालय की ओढ़ में आकर खड़ी थी। उसने यह दृष्टांत सुना और जब आराधना समाप्त हो गई और सब आराधक चले गए, तब वह पादरी साहब के पास गई और कहा, पादरी साहब, मुझे पता नहीं था कि बाइबल में मेरा नाम आया है। पादरी साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम एडिथ है। पादरी साहब ने कहा, बाइबल में किसी का भी नाम एडिथ नहीं है। उस लड़की ने कहा, नहीं, मैंने खुद आपके मुंह से सुना जब आप पढ़ रहे थे कि प्रभु यीशु पापियों के साथ भोजन करता है। अंग्रेजी में भोजन करने को पुरानी भाषा में एडिथ लिखा गया है, जिसे उसने एडिथ सुना। और यह सच भी है कि प्रभु यीशु एडिथ को, मरियम को और यूहन्ना को और सबको स्वीकार करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह पापियों को स्वीकार करता है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। अब यहां हम देखते हैं कि किसी चरवाहे की एक भेड़ कम हो गई है। लूका 15 अध्याय उसके 3-7 पद में लिखा हुआ है, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा ले आता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्रों, यहां चरवाहा हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। वह प्रधान चरवाहा है, उसकी भेड़ें हम हैं। प्रभु यीशु ने यहां आंकड़े भी बहुत सोच समझ कर दिए हैं। चरवाहे की पूरी 100 भेड़ें चाहिए थी, वह 99 भेड़ों से संतुष्ट नहीं था, अतः वह उसकी खोज में निकलता है और जब तक वह नहीं मिल जाती शांति से नहीं बैठता है। जब वह उसे मिल जाती है तब वह उसे कंधे में बैठाकर और उसे अपने साथ लेकर आता है, उसे गोद में उठाकर घर लाता है और तब शांति पाता है। वह उसकी खोज में दुनिया के छोर तक जाने को तैयार था। मेरे मित्रों, इसराइल के महायाजक के वस्त्र के कंधे पर 2 पत्थर लगे होते थे जिन पर इसराइल के गोत्रों के नाम थे, एक पत्थर पर 6 गोत्रों के और दूसरे पत्थर पर 6 गोत्रों के। इसका अर्थ था कि महायाजक उन्हें कंधों पर उठाकर रखता था। इसी प्रकार हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह भी हमें कंधों पर उठाए हुए है कि हम खो न जाएं। वह एक भी भेड़ कम होने नहीं देगा। उसने पिता से कहा था कि उसने एक को भी नहीं खोया है। यह प्रभु यीशु मसीह का चित्रण है। वह अपनों की निगरानी कर रहा है। चाहे आप जहां कहीं भी हो, वह हमारा अच्छा चरवाहा है। वह हमारी चिंता करता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, क्योंकि वह इस जगत में इसलिए आया कि वह पापियों को उद्धार दे। मेरे मित्रों, वह आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। वे चाहते हैं कि हम उसके निकटता में आए, उसे स्वीकार करें और उसके निकटता में रहकर उसकी महिमा करें। आज मेरे लिए और आपके लिए एक चुनौती है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ कमी है, कुछ घटी है, तो हमारे लिए एक अवसर है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें, क्योंकि वह अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे और हर एक प्रकार के लोगों को स्वीकार करता है। यदि आप नहीं आएंगे तो वह किसी दूसरे को ले लेगा। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले अध्ययन में हम और आगे देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें नई बातों के द्वारा अपनी बातों को हमें समझाते हैं। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है और वह हमारे ही खोज में इस जगत में आया ताकि वह हमें उद्धार का आनंद दे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और सहायता करे ताकि आप जाने कि आपका चरवाहा और मेरा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके माध्यम से आज आपने हमसे फिर से बातचीत किया है और इस बात को हमारे सामने आपने प्रकट किया है कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो, हर एक व्यक्ति बचाया जाए। हमारी प्रार्थना है हमारे भाई बहनों के लिए जो अलग अलग जगहों में रहकर आपके वचन को सुनते हैं, जो निराश में है, तंगी और मुसीबत में है, और खास करके जो पाप में जीवन जी रहे हैं और उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता और मदद करें, उनकी पुकार को सुने ताकि वे अपने पाप में जीवन से बाहर निकलकर आपके उस सच्चे मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सकें। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु, आप उनसे भी प्यार करते हैं, आप उन्हें भी बचाना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को आप बहुत ऐसे आशीष दें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 8820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है। जब मैं भटक गया जीवन को तूने सहारा दिया, तुझसे जब मैं भटक गया जीवन को तूने सहारा दिया, अच्छा चरवाहा बन से प्रभु मैं।